आशा की किरण, यह है पॉडकास्ट आपका अपना, जहां पर आप और हम मिलकर जीवन को देंगे एक नए सूर्योदय की आशा की किरण। जी हां साथियों, इस कार्यक्रम में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जिंदगी को ले जाएं उम्मीद, आशा, अच्छी बातें, सकारात्मक बातें और ढेर सारे उत्साह की ओर। तो फिर हर रोज़ आशा की किरण में आपसे मुलाकात होती रहेगी। हम नए नए प्रयास जीवन को एक उत्थान देने की करते रहेंगे, ज़रूरत है आपके साथ की। तो मिलते रहिए आशा की किरण में, जो लेकर आऊँगी मैं आपकी दोस्त किरण आचार्य। नमस्कार साथियों, श्री कृष्ण ने गीता में कर्म योग को भी आधार बनाया है। वे कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की आकांक्षा मत करो। श्री कृष्ण के इसी जीवन मंत्र से प्रेरित होकर हम आशा की किरण पॉडकास्ट में एक नया कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं, कर्मयोगी कोरोना योद्धा। इस कार्यक्रम में हम आपकी भेंट ऐसे व्यक्तित्व से करवाएंगे जो कोरोना के इस संकट काल में अपनी सेवाएं तत्परता से दे रहे हैं, यानी कि रियल लाइफ हीरोज से। इस वैश्विक महामारी के अंधकार में जैसे वे आशा की किरण बने हैं, वैसे ही हम उनको सम्मानपूर्वक प्रोत्साहित करेंगे और उनके अनुभवों को सुनेंगे। तो आरंभ करते हैं कार्यक्रम कर्मयोगी कोरोना योद्धा।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोत् स्वकर्मणि।
सभी साथियों को किरण आचार्य का प्यार भरा नमस्कार और जय श्री कृष्णा। साथियों, कर्मयोगी कोरोना योद्धा का जो कार्यक्रम है उसका पहला अंक लेकर हम आपके साथ हाजिर हैं। आज की हमारी जो मेहमान हैं वो हैं एक शिक्षिका बीकानेर से, श्रीमती पूनम जोशी। आप राज्य संदर्भ समूह की सदस्या भी हैं स्वच्छ भारत मिशन में, साथ ही एक शिक्षक संघ की महामंत्री भी हैं। आपने कोरोना के बड़े अर्ली स्टेज में मास्क बनाकर वितरित करना आरंभ कर दिया था और अन्य गतिविधियों से समाज को जागरूक किया। तो वास्तव में इसकी जो रिकॉर्डिंग थी इस कार्यक्रम की, वो पृथ्वी दिवस के रोज हो चुकी थी 22 अप्रैल को, और टेलीफोनिकली ये जो आपके लिए हमने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है, कहीं कहीं थोड़ा डिस्टर्बेंस है लेकिन शब्दों को जो है वो भावों से भरा जा सकता है, इसी आकांक्षा के साथ प्रस्तुत है पहला अंक कर्मयोगी कोरोना योद्धा का। कर्मयोगी कोरोना योद्धा जो हमने नया कार्यक्रम आरंभ किया है आशा की किरण में, आज उसकी पहली हमारी जो गेस्ट हैं, अतिथि हैं, मेहमान हैं, पूनम जोशी बीकानेर से। आप सभी को बता दें कि आपके बारे में हमने अखबारों में पढ़ा कि आप बीकानेर में कोरोना से लड़ने के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो स्वागत करते हैं पूनम जोशी का। पूनम जोशी जी, स्वागत, नमस्कार।
नमस्कार किरण जी।
अच्छा पूनम जी, हमने आपके सुना और सोचा कि आपसे संपर्क करें, क्योंकि आज पूरा विश्व तो है ही, पूरा विश्व कोरोना के विरुद्ध एक लड़ाई लड़ रहा है और हम कोरोना योद्धाओं को ढूंढ रहे हैं, और आपको बहुत बहुत बधाई कि आप सबसे पहली हमारी अतिथि हैं हमारे कार्यक्रम में।
शुक्रिया मैम।
तो आप क्या करती हैं?
मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्यापिका के पद पर कार्य कर रही हूँ और साथ में स्वच्छ भारत मिशन में भी मैं राज्य संदर्भ हूँ
जी।
तो इस पर भी मैं काफी काम कर रही हूँ, काफी पहले से जुड़ी हुई हूँ
जी। तो आप मतलब एकेडमिक उससे जुड़ी हुई हैं
जी मैम
जी। तो अचानक जब कोरोना का ये संक्रमण जब फैला था, तो हम सुन ही रहे थे कि हाँ चाइना में इस तरह का कुछ रोग फैला है और वहां पे काफी लोग पीड़ित हैं। भारत में इतनी आहट नहीं थी इस वक्त। आपको कब पता चला कि कोरोना जो है उसकी आहट अब हमारे बीच धीरे धीरे महसूस कर रहे हैं?
ये काफी न्यूज में आ रहा था, टीवी पर रोज देख ही रहे थे, लेकिन इंडिया में इतना इसका कुछ नहीं था। और जब धीरे धीरे ये टीवी में चर्चाएं आने लगी कि सबको हाथ धोना चाहिए और मास्क लगा के रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग में रहना चाहिए, तो ये सब चर्चाएं आ रही थी। और हम जो कि स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े हुए हैं, तो हमें उन चीजों को फॉलो करना सबसे पहले जरूरी होता है, तो हम उस चीज को फॉलो कर ही रहे थे। ये लगभग करीबन 15 मार्च के बात है कि
जी
हम लोग स्कूल में बैठे हुए थे और चर्चा चल रही थी कि सबको मास्क लगा के आना बहुत जरूरी है। तो किसी अध्यापक ने कहा कि मास्क तो बहुत कॉस्टली मिल रहे हैं,
जी
और उसी को देखते हुए मैं मार्केट में निकल गई और एक शॉपकीपर से जाके मैंने पूछा मास्क चाहिए, तो उन्होंने बोला लीजिए, तो 50 रुपीज का उन्होंने बताया।
उस दौरान आपको कितना
तो
पता था पूनम जी, उस दौरान कितना पता था कि ये मास्क एक बहुत बड़ा साधन है उस बीमारी से बचने का? क्या आपको इतना अंदेशा
इतना
था कि ये
किरण
इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा?
नहीं, इतना दिमाग में भी नहीं था, लेकिन जब उसकी कॉस्ट पता चली तो एक थोड़ा सा दिमाग में ये विचार आया कि चलो मैं सरकारी जॉब में हूँ या कोई और जॉब वाले इतना कॉस्ट इसका वहन कर लेंगे, लेकिन एक आम आदमी जो है वो इसको कैसे खरीदेगा। और क्योंकि ये जरूरी था, क्योंकि हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो सबसे पहले मुंह से जो वायरस बैक्टीरिया जो निकलते हैं वो अटैक करते हैं, तो सबसे पहले मास्क की नीड की आवश्यकता जरूरी थी। तो इसी को चलते जब मुझे लगा कि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है, तो मैं उसी समय मार्केट गई और वहां से मैंने कपड़ा खरीदा। और जो मार्केट में मेडिकल का जो आता है मास्क, उसको देख के मैंने उसको सिलाई करी और फिर मुझे लगा कि ठीक है, ये अच्छा है और कपड़े का भी है तो सही रहेगा, और लोगों का इसकी कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है, एक आम आदमी भी इसको खरीद सकेगा। लेकिन मेरा पर्पज उस टाइम ये नहीं था कि मुझे खरीदना और बेचना नहीं था, मुझे ये था कि आज जो नीडफुल लोग हैं मुझे उनको सबसे पहले देना चाहिए, जो इसको खरीद भी नहीं सकते और जिनको अभी भी जानकारी भी नहीं है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, टीवी पे भी देखते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, हर एक सिटी में ही होते हैं, जिनको ये मालूम भी नहीं रहता कि अब क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो उन लोगों से संपर्क करना और उन लोगों को देना बहुत जरूरी हो गया था, तो इसीलिए ये कदम मैंने उठाया।
तो पता चला कि पहली बात तो शॉर्टेज थी, कई जगह मिल भी नहीं रहे थे, और दूसरी बात अगर मिल
जी
रहे तो बहुत ज्यादा उसकी जो दाम लगाए जा रहे थे, तो आपने सोचा कि क्यों ना मैं इसको घर में बनाऊं। तो क्या पहली बार में आपने सही बना लिया या आपको देखना पड़ा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत नई चीज है, मास्क पहनना नई चीज
नहीं,
है तो मास्क बनाना भी हमारे लिए चीज नई
बिल बिल बिल्कुल किरण जी,
है।
कि जब, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं चल रहा था कि कैसे बनाएं, क्योंकि लोगों को टीवी पे देखते थे तो तरह तरह के पहने हुए देखते थे, लेकिन बनाने के लिए उसका आइडिया जरूरी होता है, क्योंकि ये हमारा काम नहीं था। तो हमने मेडिकल में जो मिलता है मास्क, उसको लेके, उसको देख के हमने बनाया,
अच्छा
लेकिन उसमें जो लगा रहता है, रबर लगा रहता है, हमने उसमें डोरियां लगाई ताकि कान के पीछे जो हम उसको लगाते हैं तो उससे पेन भी नहीं हो, क्योंकि ये एनी टाइम जब हम बाहर रहते हैं तो पूरा टाइम इसको लगा के रखना पड़ता है, और रबर वाले में कान के पीछे पेन होने लग जाता है तो वो इजी नहीं रहता, तो हमने उसके पीछे कपड़े में रबर की जगह डोरी लगा के उसको बनाया।
बीच में पूनम जी ऐसा भी चला था कि कुछ N95 ऐसा कोई जो है मास्क होना जरूरी है, और जो डॉक्टर्स जो पहनते हैं आजकल, तो और इसका
हाँ
जो
जी,
वो 3 लेयर्स होना जरूरी है ताकि
हाँ,
उसके जो होती है वो ऐसे होती है कि हम जब ब्लो करते हैं एयर को मुंह से, है ना, तो उसे मोमबत्ती नहीं बुझनी चाहिए, इसी तरह के मास्क ही
बिल्कुल
सफल होते हैं। तो इसके बारे में क्या आपके मास्क इस तरह के हैं क्या कि इस गुणवत्ता पर खरे उतरते हैं, या आपको लगता है कि आपके बने हुए मास्क भी इसको बचाने में सफल है?
बिल्कुल मैम, क्योंकि सबसे पहले जो मैंने इसका मटेरियल लिया है वो मैंने स्टफ जो था वो मोटा लिया है, खादी का लिया है, तो खादी का जो कपड़ा होता है वो मोटा होता है और उससे हवा आर पार नहीं होती, और उसमें भी बीच में 3 लेयर लगा के उसको बनाया
तो
गया
आपने
है,
पूरा
तो
गुणवत्ता का
उसकी
भी पूरा
काफी
ख्याल रखा है।
बिल्कुल,
तो कैसे
ताकि उससे
शुरुआत
लोगों को
कैसे हुई,
परेशानी
कैसे
नहीं हो।
शुरुआत हुई? मास्क बनाने की, और ये इस जर्नी पर एक छोटी सी नजर हम डालना चाहेंगे कि कब आपको लगा कि अब ये परफेक्ट बन गए हैं और मुझे किन को देना चाहिए और किन के द्वारा देना चाहिए।
जी, तो जब मैंने ये देखा था मार्केट में कि अवेलेबल भी नहीं है, कॉस्ट भी इसकी ज्यादा आ रही है, तो सबसे पहले मैंने शुरुआत करी कि जब लॉकडाउन चालू भी नहीं हुआ था और ये 144 धारा लगी थी, तो उसी के दौरान भी चार जने खड़े भी नहीं हो सकते, तो थोड़ा बाहर निकलना भी ऐसा लग रहा था, लेकिन ड्यूटी पे जा रहे थे तो कोई ऐसा नहीं था। लेकिन मैंने कि फिर किसी एक नीडफुल महिला को पकड़ा जो सिलाई जानती थी
जी
कि इसकी थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी और मैं इसके माध्यम से सिलवा भी लूंगी, तो उसके माध्यम से मैंने सिलाना चालू करा। तो वो करीबन किरण जी की एक दिन में 80 से 90 मास्क सिल के तैयार कर देती थी।
अच्छा।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो उसके जो इनकम का सोर्स बन रहा था, और दूसरा जो मेरा मकसद था कि लोगों को आसानी से, उन लोगों को जो खरीद नहीं सकते या जो इनके बारे में जानते नहीं है, उनको अवेयर करना, क्योंकि हम ऐसे चीजों से जुड़े हैं कि लोगों को मोटिवेट करना हमारा पहला काम रहता है। तो इसी को लेते हुए मैंने पहले, सबसे पहले जो झुग्गी झोपड़ियां जैसे हैं कई जगह वहां पे दिया। उसके बाद में मैंने सोचा कि काफी, जब जैसे ही लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगने के बाद में किरण जी ये हुआ कि न्यूज में पेपर में आया कि जो लोगों को, सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी लगा दी
जी
है लेकिन उसके पास मास्क उपलब्ध नहीं है, तो उन लोगों को मैंने प्रोवाइड कराया, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, चाहे वो हॉस्पिटल वाले हैं, मेडिकल से रिलेटेड कोई भी है, मीडिया वाले हैं, मैंने सबको उपलब्ध कराए हैं जो बाहर फील्ड में काम कर रहे थे,
तो
ताकि
अब तक आप
उनको आसानी से मिल भी जाए।
अब तक आपने कितने मास्क बना लिए?
मैंने काफी मात्रा में बना दिए, समथिंग मैंने वितरित कर दिए, और अभी मेरा ये मिशन चालू है।
तो पूनम जी, हम अपनी बातचीत को जारी रखेंगे, लेकिन एक गाना भी हम सुन लेते हैं। अगर आपको कोई गाना पसंद हो तो मुझे बताइए, मैं प्ले करूंगी आपके लिए जरूर।
क्योंकि गाने तो देखो, पुराने गानों के शौकीन हूँ, और मेरा सबसे यही रहता है कि जब मैं सिलाई मशीन पे बैठती हूँ ना किरण जी, तो मैं मेरा पुराने गाने का फोन में रिकॉर्ड कर रखा है, एक मेमोरी कार्ड डाल रखा है, और मैं गाने चलाती हूँ अपनी धुन में और मास्क
तो
सिलती
मैं
रहती
आपको कोई
हूँ।
पुराना गाना सुना दूंगी जरूर से, ताकि आप अपना प्रोग्राम भी
बिल्कुल
जब सिलाई मशीन चलाते हुए सुनेंगी तो अपने पसंद का गाना भी सुन लीजिएगा साथ में। तो आइए सुन लेते हैं ये गीत।
जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम है खुशियाँ, थोड़े गम है थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव को ये जीवन है। सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, उसे अपना लो जो ही जीवन की रीत है, ये जिद छोड़ो यू ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग।
हाँ तो पूनम जी, जैसा कि आप भी जानती हैं कि प्रधानमंत्री महोदय ने एक मास्क फोर्स करके एक कैंपेन निकाला है, जिसमें बड़े बड़े हमारे सभी जो
स्टार्स हैं, चाहे स्पोर्ट स्टार्स हो चाहे फिल्म स्टार्स हो, उन्होंने सबने पार्टिसिपेट किया, सबका अपना एक मास्क होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, ये सबको सीखना चाहिए बनाना?
क्योंकि किरण जी, जैसा अभी रिपोर्टों को देख के और न्यूज को देख के लगता है कि ये शायद थोड़ा लंबा चलेगा, तो इसको देखते लगता है कि मैं तो सभी लोगों से ये कहना चाहूंगी कि हर व्यक्ति को अपने घर में, महिलाएं हैं ऑब्वियसली, सबके घर में सिलाई मशीन होगी और थोड़ा बहुत सिलाई तो हर कोई जानता है, तो वो कम से कम अपने घर के लोगों के लिए तो खुद तैयार कर सकती हैं, ताकि हमें बाहर जाना नहीं पड़े। और ऐसा नहीं है कि जहां घर होगा वहां पे कपड़ा भी कोई ना कोई कॉटन का कपड़ा मिल ही जाएगा किसी न किसी के घर में,
बिल्कुल
तो वो कम से कम अपना खुद का भी बना सकती है, अपने पड़ोस में भी किसी को वो वितरण कर सकती है, तो इससे काफी ज्यादा सहयोग रहेगा, लोगों को मारा मारी नहीं होगी इतना और भटकना भी नहीं पड़ेगा।
बिल्कुल, इसी तरह से वो अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा सकती हैं, अगर थोड़ा
बिल्कुल
बहुत आता हो तो। आजकल तो डिजाइनर मास्क,
हाँ
तो कहने का मतलब ये है कि जो सच्चाई है उसे स्वीकार करना पड़ेगा। मास्क अगर आने वाले दिनों में हमारे जीवन का, हमारे पहनावे का हिस्सा बनने वाला है, तो उसको स्वीकार करके और इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कई बार
बिल्कुल,
ऐसा
क्योंकि
भी
काफी जी
है पूनम जी, कई बार जैसे आपने मास्क बनाए और अचानक आप उन बस्तियों में वितरित करने भी नहीं निकल सकते हो। आजकल तो आपके उधर भी लॉकडाउन होगा बीकानेर में?
हाँ बिल्कुल,
अच्छा, तो फिर आप
कर्फ्यू भी
किस,
है, लॉकडाउन भी है।
हाँ, तो किस तरह से आप इसका वितरण कैसे करवाते हैं, फिर किसके थ्रू करवाते
मैं इसमें कभी तो मीडिया वालों की हेल्प लेती हूँ
हैं?
ज्यादातर, क्योंकि कर्फ्यू एरियाज में मुझे अगर पहुंचाने होते हैं, किसी का कॉल आया रहता है, क्योंकि मैंने ये न्यूज चैनल में दे दिया था कि अगर किसी को भी नीड हो तो ये मेरे नंबर हैं और आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बिना दिन और रात देखे आप कभी भी संपर्क मुझसे करना चाहें कर सकते हैं, मैं आपको एनी टाइम मास्क उपलब्ध करा दूंगी। तो जैसे कॉल्स आते हैं मेरे पास में, तो मैं मीडिया वाले कुछ लोगों को का सपोर्ट लेती हूँ और उनके सहयोग से मैं उन तक मास्क पहुंचाती हूँ।
अच्छा, क्योंकि आपको एक सेफ डिस्टेंस भी बना के रखनी है। कई बार मैंने
बिल्कुल
देखा है कि वो मास्क देने के चक्कर में इतने पास में आ जाते हैं कि जो सोशल डिस्टेंस या फिजिकल डिस्टेंस जो रखनी चाहिए उसका पालन
हाँ,
नहीं
वो
करते
भूल
हैं। तो
जाता
ये बड़ा सेफ तरीका है
है
कि
हाँ
आप पुलिस को या मीडिया कर्मी को या जिनको स्वास्थ्य कर्मियों को, जहां जिनको वहां जाने की इजाजत है, उसके थ्रू दे सकते हैं। क्योंकि कई बार हो सकता है कई लोग आपको देख के इंस्पायर हो, उस चीज को करना चाहें, तो इस बात का ख्याल
नहीं,
जरूर रखें।
नहीं जाती भी हूँ, मैं भी जाती हूँ, लेकिन मैं कम निकलती हूँ क्योंकि ये चीजें हैं, थोड़ा पकड़ में आ जाता है और वो लोग बराबर घूमते रहते हैं। देखिए हम एक चीज लॉकडाउन का, सरकार का नियम का भी पालन कर रहे हैं, साथ
बिल्कुल
में हमें उस चीज को भी सोचना चाहिए, क्योंकि जैसे मैं निकलूंगी तो हर कोई निकलने लग जाएगा बाहर, तो
बिल्कुल
ये उचित भी नहीं रहता। अपने काम को घर बैठे ही अंजाम दे रहे हैं, किसी न किसी प्रकार से हम हर तरह से सहयोग करने की पूरे वो इच्छा रखते हैं और करते रहते हैं कि कभी कोई बाधा अभी तक आई नहीं है इसमें। एक चीज और मैं शेयर करना चाहूंगी आपसे कि जैसे ये शुरू हुआ था, हमने इसको शुरुआत करी थी 15 मार्च से, और उसी को चलते ही एक आइडिया आया था, तो हम एक छोटे सा रोल प्ले टाइप में हमने किया था मूक स्कूल में,
अच्छा
विद्यालय को स्टाफ को लेते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए एक वीडियो वायरल किया था, तो वो काफी पॉपुलर हुआ। इसके अंदर वही था कि हाथ धोने चाहिए, साथ में डिस्टेंसिंग बना के रखनी चाहिए और मास्क लगा के रहना चाहिए, तो आपके कोरोना नजदीकी नहीं आएगा,
ठीक
तो
है,
इस तरह से करके एक बनाया था ताकि उसको लोग देखें और जागरूक बने उस टाइम, क्योंकि इतना प्रचलन में नहीं था, जब शुरुआत में थे तो लोग इतना जान भी नहीं रहे थे, तो वो वीडियो के माध्यम से भी हमने लोगों को जागरूक करने की एक कोशिश की थी और प्रयास काफी अच्छा रहा था।
तो आपका प्रयास बहुत अच्छा रहा। इसी नोट पर एक और पुरानी फिल्म का गीत हम आपको सुनवा देते हैं।
कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। सुख कभी दुख, यही जिंदगी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे।
पूनम जी, ये गीत हमने सुना और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अब हम
बिल्कुल,
आपकी बहुमुखी प्रतिभा तो हमने देखी कि एक तरफ आपने मास्क बनाए और मदद भी की, एक महिला दो महिला आपके यहाँ पर बैठकर मास्क सिलती हैं और उनको भी रोजगार मिल गया, चाहे कम समय के लिए ही सही, कुछ कमाई तो हो गई। उसके बाद आपने
बिल्कुल
इस तरह की नाटिका वगैरह करके भी आपने जागरूकता फैलाई। जो ये जो युद्ध है वो लंबा है कोरोना के विरुद्ध, हम ऐसा नहीं कह सकते कि आने वाले एक दो महीने में खत्म हो जाएगा, तो इसके लिए बहुत लंबी प्लानिंग चाहिए। अगर कोई कुछ करना चाहता है तो पर्टिकुलर आज
जी।
करके रुक जाएगा तो आगे उसका असर नहीं जाएगा, तो आपकी आगे क्या प्लानिंग है?
मेरी तो प्लानिंग पर्टिकुलर तो यही है कि जब तक ये चलेगा, मेरा प्रयास ये रहेगा जब तक मेरे में हिम्मत है मैं करती रहूंगी, क्योंकि मैंने किरण जी अभी तक किसी का सपोर्ट नहीं लिया, मैं अपने दम पे जो काम कर रही हूँ अपने दम पे कर रही हूँ। और रही बात ये है कि मैं चाहूंगी, क्योंकि मैं स्वच्छ भारत मिशन में काम करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि हमारा जो इतना बड़ा ग्रुप है पूरे राजस्थान में, तो हम लोग मिलकर भी कुछ इसमें करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है सबसे ज्यादा।
बिल्कुल,
तो हम बात वही करते हैं स्वास्थ्य और स्वस्थ रहने की, तो इसमें मास्क भी हम ऐड कर सकते हैं और वही चीजें जो हम हमेशा से बताते हैं किरण जी, हमेशा से
हाथ
फील्ड में,
धोना वगैरह सब।
हाँ हाथ हाथ धोना है। और
जब कोई इसके बारे में जानता भी नहीं था, आपने कदम उठाया, जागरूकता फैलाई इसके बारे में कि कोरोना से कैसे बचा जाए, साथ ही मास्क बना करके वितरित किए, तो आपको एप्रिसिएशन कैसा मिला आपके आसपास के लोगों से? क्या उन्होंने एप्रिशिएट किया, किसने कहा कि सहायता दी, या क्या कहना चाहती हैं आप? आसपास से सहयोग मिलता है?
देखिए, मेरा जो मकसद था वो था लोगों को जागरूक करना। जागरूक करने का मतलब ये है कि मेरे दिमाग में ये चीज आई कि मैंने मास्क बनाना शुरू किया, तो मैं ये चाहती थी कि मैं जिस तरह से बना रही हूँ मुझे देख के और भी लोग बनाएं और सहयोग के लिए आगे आए। तो पर्सनली मुझे सहयोग नहीं करा, लेकिन वो खुद से बना के चालू, लोगों ने भी जैसे मेरी तरह कई बहनें और जुड़ गई बाद में। फिर क्या 10 दिन बाद में प्रशासन भी इसमें आगे आ गया, और हमारे जो बीकानेर के कलेक्टर हैं कुमार पाल जी, उन्होंने भी इसमें सहयोग करा, उन्होंने भी संस्थाओं के माध्यम से 50,000 समथिंग मास्क बनवाए
अच्छा।
और लोगों में वितरित किए। तो मेन ये है कि लोगों को बहुत इससे जागरूकता मिली और लोग आगे आए, और काफी बीकानेर में काफी सहयोग रहा है इस चीज का।
क्योंकि अभी वाला जो युद्ध है वो छुपकर खेलना है, हमारा जो शत्रु है वो भी अदृश्य है और नजर नहीं
बिल्कुल
आता, हमको भी उससे दूर रह करके लड़ना है, तो मास्क उसमें
बिल्कुल
एक बहुत बड़ा अस्त्र हो सकता है। तो आपने इतनी अच्छी जानकारी हमको, कैसे आपने इसको किया, और आगे आप करती रहें, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।
किरण जी, एक बात और जोड़ना चाहूंगी, आज पृथ्वी दिवस है, और
हाँ
उसमें मैं ये चाहूंगी कि जो भी संदेश ही चाहिए चाहिए लोगों के लिए, कि जो भी मेडिकल मास्क जो लगाते हैं उनको कृपया बाहर खुला ना फेंके, क्योंकि उनके जो बैक्टीरिया मास्क पे आ जाते हैं फिर वो बाहर, उनको पशु भी मुंह में डालते हैं, डॉग्स वगैरह को मैंने देखा है वो मुंह में लिए घूमते फिरते हैं, तो इनको कहीं ना कहीं डस्टबिन में उनको डालना चाहिए, ना कि उनको खुला फेंकना चाहिए।
हाँ, मास्क उपयोग करते हैं तो उसका डिस्पोज का भी एक तरीका है, फेंकना
तरीका
नहीं
होना
तो
चाहिए।
उसको सैनिटाइज करके, इवन ये भी कहा गया है कि सैनिटाइज करके फेंकिए अपना मास्क, अगर फेंकना भी है तो उसको
हाँ
सैनिटाइज कीजिए, धो दीजिए साबुन से फिर फेंकिए।
फिर
और
फेंकिए,
जो
लेकिन
कपड़े के बन रहे हैं वो तो खैर घर पे धुल ही सकते हैं, और ऐसा
आराम
भी
से
कहा गया है कि
बहुत,
हर 8 घंटे में हमको अपना मास्क भी चेंज करना चाहिए।
बिल्कुल सही है। तो इससे क्या होगा कि जो पृथ्वी आज हम बचाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी है तो हम हैं,
बिल्कुल
तो अगर पृथ्वी पे साफ सफाई और स्वच्छता रहेगी तो हमारा जीवन भी उतना ही लंबा चलेगा।
बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही, और इसी संदेश के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और हमारी कर्मयोगी कोरोना योद्धा की पहली मेहमान बनी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।
थैंक यू किरण जी।
तो साथियों देखिए कैसे पूनम जोशी ने एक ला चालो रे इस मंत्र के साथ चलना शुरू किया, दो महिलाओं को अपने साथ जोड़ा, उन्हें रोजगार दिया, मास्क बनाने का काम बड़ा अर्ली स्टेज में शुरू कर दिया और उसका वितरण आरंभ कर दिया, साथ ही कई अन्य गतिविधियों से भी समाज में कोरोना के विरुद्ध लड़ाई को साथ में लेते हुए उन जागरूकता फैलाई। तो साथियों उनका यह भी कहना था कि वो आज भी मास्क बना रही हैं और बीकानेर में अगर किसी को भी मास्क की ज़रूरत है तो वे उनसे इन फ़ोन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। ये हैं नंबर नोट कीजिए, 9950185870, यानी कि 9950185870। तो पूनम जोशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों मुझे मालूम है आपके आसपास भी ऐसे लोग, ऐसे व्यक्तित्व मौजूद होंगे जिनको आपको लगता है कि उनको कर्मयोगी कोरोना योद्धा के इस कार्यक्रम में होना चाहिए, तो ज़रूर मुझे मैसेज करके बताइए, हम उनका भी इंटरव्यू लेंगे, उनका प्रोत्साहन करेंगे, उनको उत्साहवर्धन करेंगे, धन्यवाद भी करेंगे। तो बदलाव चाहते हैं ये भी बताएं, तो आपके मैसेजेस का इंतज़ार रहेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम से दीजिए विदा, किरण आचार्य को फिर मिलेंगे। नमस्कार, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है।
किसी की मौत हो ना, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।
आशा की किरण, यह है पॉडकास्ट आपका अपना, जहां पर आप और हम मिलकर जीवन को देंगे एक नए सूर्योदय की आशा की किरण। जी हाँ साथियों, इस कार्यक्रम में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जिंदगी को ले जाएं उम्मीद, आशा, अच्छी बातें, सकारात्मक बातें और ढेर सारे उत्साह की ओर। तो फिर हर रोज़ आशा की किरण में आपसे मुलाकात होती रहेगी, हम नए नए प्रयास जीवन को एक उत्थान देने की करते रहेंगे, ज़रूरत है आपके साथ की। तो मिलते रहिए आशा की किरण में, जब लेकर आऊँगी मैं आपकी दोस्त किरण आचार्य।